नमस्कार, ब्रह्म कुमारी की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी विशेष प्रस्तुति, इसका नाम है बी द चेंज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और लगभग 3 महीने से ज्यादा समय से दोस्तों हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात का उद्देश्य बहुत ही छोटा सा था कि ये जो बदलाव का वक्त है, इस बदलाव के वक्त में हम सभी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नए चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हम एक छोटी सी पहल ये कर रहे थे कि अगर आपको कुछ मदद की जरूरत है, अगर आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की या स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता है तो वो हम आपको ऑफर करें और ब्रह्मा कुमारी की इस कोशिश में आप सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप सभी दोस्तों ने बेझिझक अपने सवाल हमारे साथ किए हैं और ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने मास्टर ऑफ मेडिटेशन बनकर हमारे इस कार्यक्रम में गाइडेंस ऑफर कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और जहां आवश्यकता है वो हर घर से प्रयास कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिल सके। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा इशू है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक या यूट्यूब पर जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर टाइप इन कीजिए और आपके कमेंट्स को हम सीधे फीड से यहां पर लेंगे और आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन से प्रश्नों का समाधान लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते, कोई ऐसी ही बात कहना चाहते हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो शेयर करना चाहते हैं या हमें एक शाउट आउट देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक नए मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं। हमारे साथ आज के मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में ब्रह्मा कुमार सुरेंद्र भाई जी जुड़े हैं जो अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाओं को आगे बढ़ाने में उनका अथक योगदान रहा है। पिछले अनेकों कई दशकों में ब्रह्मा कुमारी के अनेकों सेवा केंद्रों पर हजारों भाई बहने इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आध्यात्म के राह पर और एक पॉजिटिव वे में दिशा दे रहे हैं। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र भाई जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। भाई जी, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं हर दिन कार्यक्रम में। हमारे पहले दोस्त जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर जी इनका नाम है और वो यूट्यूब से हमारे साथ हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। आई हैव जॉइंड जॉब इन मे एंड वर्क फ्रॉम होम, नॉट एबल टू पिकअप द जॉब प्रॉपरली, नो सपोर्ट फ्रॉम माई टीम मेंबर्स एंड ऑल आर इन डिफरेंट प्लेसेस, आई एम इन स्ट्रेस एंड वॉट शुड आई डू। चंद्रशेखर जी मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में उन्होंने नया जॉब ज्वाइन किया है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नया जॉब होते हुए भी घर से ही काम करना पड़ रहा है और वो कहते हैं कि उनकी जॉब को वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नया जॉब है और नए तरीके से पिकअप करने में भी उनको दिक्कत हो रही है और वो कहते हैं उनके टीम मेंबर्स से भी उनको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे टीम मेंबर्स भी घर से काम कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, इस वजह से मैं स्ट्रेस में हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा चंद्रशेखर पूछते हैं।
चंद्रशेखर जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने जॉब ट्राई किया है मई के अंदर ही, लेकिन आप इन परिस्थितियों को पॉजिटिव लें क्योंकि इस टाइप की जो परिस्थितियां होती है आपको सेल्फ डिपेंड बनाने में बहुत मददगार होती है, आपको अपने आप को खड़ा कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। आप शुरू से ही जब फाउंडेशन ही आपका मजबूत हो जाएगा कि भाई मैं अकेला ही कर सकता हूं, चाहे मेरा टीम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हमें तो आप कंफर्टेबल है, उसके घर के अंदर कंफर्टेबल रह करके परमात्मा को साथ दे करके, जिस भी इष्ट देव देवी देवता को आप याद करते हैं उनको साथी बनाइए, उनका सहयोग लीजिए, अपने परिवारजनों को साथ रखिए, अपने आत्मविश्वास को बना करके आप जॉब करते रहिए, कोई समस्या की बात नहीं है, बल्कि आगे जाके आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है, आगे जाके आप अपने पांव पे खड़े होकर और अच्छे से इस जॉब को अच्छे से कर पाएंगे, हो सकता है कंपनी को आपसे बहुत फायदा मिले, इसलिए आप इस चीज को अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि पहली बात तो आप घर पे हैं, आराम से हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, इसलिए आप अपने घर से बड़े आराम से करिए, रिलैक्स रहिए। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा बी स्पिरिचुअल, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन जरूर करें, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, कहीं ना कहीं मेडिटेशन के साथ रहें, थोड़ा सुबह उठते ही शाम को जब भी 5-5-10-10 मिनट निकाल के थोड़ा ध्यान लगाएं, तो उससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और आपको अपने जॉब को करने में ज्यादा सहयोगी होगा। ओके
जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने कही भाई जी, इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, और क्योंकि ये ऐसा समय हम सभी के साथ चल रहा है जिसमें हम सब लोग अलग अलग परेशानियों के साथ डील कर रहे हैं, और ये चैलेंजेस सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे दोस्तों को ये चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और वो सिर्फ ये बताते हैं, हालांकि वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि मन बहुत नेगेटिव सोचता है और वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दे कि मन जब बहुत नेगेटिव सोचता है तो क्या करना चाहिए। जितेंद्र
जी, की समस्या आम समस्या है, ये तो दुनिया की आम समस्या है, लेकिन जितेंद्र जी आप सबसे पहले तो आपको अपना नाम याद रखना चाहिए। आपका नाम जितेंद्र है, अर्थात जितेंद्र अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। आप जब इंद्री जीत बन करके, सही माने में जितेंद्र बन करके अपने मन को कमांड करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि मेरा मन जब कहते हैं, जिस चीज को मेरा कहता हूं, तो अवश्य मैं उसका मालिक हुआ। मालिक बन करके मन का संचालन करना है। वैसे मन के बारे में थोड़ी व्याख्या को अगर आप समझ सकें, क्योंकि मन एक बहुत सटल ऑर्गन है जो आत्मा के साथ चलता है, चिंतन करता है, सोचता है। एक विचार शक्ति का नाम मन है, उस पर लगातार पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। बहुत बड़ी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं कि बहुत नेगेटिव सोचता है। आप अपने आसपास का जैसा वातावरण आप रखेंगे, आपका चिंतन जैसा आप रखेंगे, आपका अध्ययन जैसा रखेंगे, आप जैसा अपना मनन रखेंगे, जैसा आपका वार्तालाप रखेंगे, उसी प्रकार की वही बातें मन को अंदर अंदर धीरे धीरे समाती जाती है, और जो बातें मन में समाती है उसी पे मन चिंतन करता है। इसलिए आप अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखें, आपके सोच को, आपके दर्शन को, आपके श्रवण को, आपके वचनों को, आपके पठन पाठन को, जितना आप इतना पॉजिटिव को रखेंगे, मन आपके नियंत्रण में आता चला जाएगा। मन को बहुत जल्दी आप चाहें कि एक दिन में काबू कर सकें, उसमें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मन धीरे 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 अपने पॉजिटिविटी की ओर जाता है, और बहुत आसान है। मैं फिर कहूंगा कि मन के लिए थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा मनन और थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है। जैसे जैसे मन को ये पॉजिटिव बातें मिलेगी, क्योंकि मन भी शांति चाहता है, मन भी सुकून चाहता है, मन भी अपने आप को शांत रख करके सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। इसलिए मन के ऊपर आप ज्यादा नहीं सोच करके मन को अच्छा अच्छा भोजन खिलाएं, और मन का भोजन है संकल्प। जब संकल्प रूपी भोजन मन को आप पॉजिटिव देते रहेंगे, अच्छा अच्छा देते रहेंगे, स्वस्थ भोजन से स्वस्थ मन का निर्माण होता है, आपका चिंतन भी स्वस्थ होगा। मन के लिए सबसे पहले मनन चाहिए, और जब मन पे मनन शुरू हो जाएगा तो वो अमन हो जाएगा, और अमन होते हुए आगे बढ़ के वो सुमन भी हो जाएगा, और जिस दिन सुमन हो जाएगा यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र सिद्ध होगा। इसलिए मन को मित्र बनाइए, मन को शत्रु समझ करके उसकी चिंता नहीं करें ज्यादा, उसको अच्छा भोजन खिलाएं। जैसे आपको भी अच्छा भोजन पसंद है ना जितेंद्र जी, अच्छा भोजन किसको पसंद नहीं, तो इससे उसको भी अच्छा भोजन करिए, सब ठीक। ओके,
बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी कि ये मन को अच्छे विचार देना जरूरी है। मन का भोजन भी अगर आप अच्छा देते हैं, तो अक्सर करके हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि हम अपने माइंड को फीड क्या कर रहे हैं, क्या चीज हम अंदर डाल रहे हैं, कौन से विचार अपने आप को दे रहे हैं, और उस पर ध्यान देने से बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया उस उत्तर के लिए। हमारे साथ ज्योति मिश्रा जी हैं जो यूट्यूब से हमारे साथ लाइव देख रही हैं प्रोग्राम, और वो प्रश्न पूछती हैं, व्हाई इज द परसेप्शन ऑफ टू पर्संस डिफरेंट, कोई एक और सिचुएशन से इजीली एडजस्ट कर लेता है और दूसरा नहीं, हाउ डू वी थिंक पॉजिटिव इन बैड सिचुएशंस। ज्योति मिश्रा जी का प्रश्न है कि दो व्यक्ति अलग अलग परसेप्शंस क्यों रखते हैं, अलग अलग धारणाएं क्यों होती हैं दो इंसानों की, कोई और सिचुएशन होता है, कोई मुश्किल सिचुएशन होता है तो भी कुछ लोग आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं और दूसरे लोगों को एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल लगता है, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव सोचें कि भाई बैड सिचुएशन है, कोई गलत परिस्थिति है, कोई मुश्किल परिस्थिति है, उसमें भी हम सकारात्मक कैसे सोचें, और व्यक्ति अलग अलग सोच क्यों रखता है, ये पूछते हैं ज्योति।
बहुत सुंदर प्रश्न है ज्योति बहन जी आपका, बहुत ही सुंदर प्रश्न, बड़ा अच्छा चिंतन से आपने पूछा इस प्रश्न को। देखिए पहले तो हम इस बात को जानते हैं, शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने कहा है कि सृष्टि एक रंगमंच है, एक नाटकशाला है और हम सब इस सृष्टि रंगमंच के एक्टर हैं। तो एक ही एक्टर जो एक्टिंग करता है वही एक्टिंग दूसरा तो नहीं करेगा, और दूसरा करेगा तो उस ड्रामा का, उस नाटक का मजा ही नहीं आएगा। इसलिए तो बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का विचार अलग है, उसका सोचना अलग है, उसका करना अलग है, ये तो इस सृष्टि रंगमंच की खूबसूरती है। रही बात कि कोई और सिचुएशन से इजीली एडजस्ट कर लेता है और कोई दूसरा नहीं कर पाता, तो इसके अंदर भी हमारा जो सोच है और हमारा जो पास्ट है ये दोनों मैटर कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को किस ढंग से जी रहे हैं, क्या मेरे जीवन का आधार है, मेरा सोच क्या है, मैं किस ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं, और न अपने बारे में ही क्या मैं सोचता हूं, क्या मैं अपने आसपास के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सहयोगों के लिए, देश के लिए भी कुछ सोचता हूं। यदि मेरा सोच इस टाइप का है कि मैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यदि इस विचार से मैं सोचता हूं तो मुझे किसी भी और सिचुएशन को पार करने में आसानी होगी, क्योंकि उतनी ही मेरे साथ दुआएं होगी, लोगों का सोच पॉजिटिव हुआ मेरे लिए, और जब चारों ओर का वातावरण और लोगों की दुआएं, ये एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ा सूक्ष्म साइंस है इसके अंदर, कि यदि ये मुझे मिलता है तो मैं हर परिस्थिति को पार कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं केवल सेल्फिश होकर के अपने लिए जीता हूं, अपने लिए सोचता हूं, अपने लिए करता हूं, चाहे फिर उसमें दूसरों का नुकसान हो जाए, तो ये बातें भी बहुत गहराई से हमें असर करती हैं, क्योंकि जब दूसरों की दुआ या बददुआ हमें मिलती है वो जरूर हम पे असर डालती है। इसलिए पहले तो ये बिल्कुल ना सोचे कि सबका सोच अलग है, क्योंकि हर आदमी का सोच अलग होना ही चाहिए, हर आदमी का कर्तव्य अलग है, हर आदमी का रोल अलग है, और यही हमारी सृष्टि की खूबसूरती है। हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि मेरा अपना सोच कैसा, क्योंकि देखिए फिल्म का जैसे कोई एक्टर होता है तो वो अपने रोल पे फोकस करता है, अपने डायलॉग को याद करता है, अपने रोल को बेटर करने की कोशिश करता है, वो ये नहीं देखता है कि पास वाला क्या कर रहा है, दूसरा एक्टर क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोचता है। ये सोचना डायरेक्टर का काम है। तो हम परमात्मा को भी साथी बनाए, उस पर निष्ठा रखें, विश्वास करें, क्योंकि परमात्मा इतने बड़े सहयोगी हैं कि सिर्फ उनको दिल से याद करें, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा, मेरे जिसको भी आप मानते हैं उसको प्यार से मेरा कहिए, उसमें आप ममत रखिए, तो आपके पीछे खड़े मिलेंगे, आपको सहयोगी रूप में मिलेंगे। इसलिए आप किसी भी सिचुएशन को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका हमजिंस परमात्मा हो गया और जब आपका सोच पॉजिटिव है, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो आप आसानी से परिस्थिति को पार करेंगे। इसलिए ज्योति बहन बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, अच्छा लगा, कुछ आपके सवाल में ही आध्यात्मिक चिंतन है, इसलिए मैंने थोड़े आपके उत्तर को थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की। इज दैट ओके
जी? मैं समझता हूँ ज्योति जी इस बात को समझेंगे, और बहुत ही ऊंची बात आपने कही। जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे वो बात याद आई कि द बेस्ट वे टू लूज योर सेल्फ इज इन द सर्विस ऑफ अदर्स। कहा जाता है कि अगर अपने आप को खोना ही है, अगर आपको करना है, तो आप दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों के बारे में ख्याल करें, चिंतन करें, उस विश्व के बारे में सोचें, तो बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। एक और दोस्त हमारे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं भाई जी, नाम है इनका पंकज कुमार भट्ट। पंकज जी पूछते हैं, ओम शांति, आई एम अ फेलियर ऑफ लाइफ, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क एंड टीचिंग, बट आई कांट स्टे इन सिंगल प्लेस, आई हैव नॉट गॉट एनी मनी एंड रिस्पेक्ट इन लाइफ, एवरीवन कम टू मी ओनली टू कंप्लीट देयर इंटेंशंस। पंकज कुमार जी थोड़ी मुश्किल बात कहते हैं, वो कहते हैं वो अपने आप को, उनके लाइफ को फेलियर समझते हैं, और वो कहते हैं कि हालांकि मेरे जीवन में सोशल वर्किंग और सोशल वर्क और टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बट मैं कभी भी एक जगह पर कहीं नहीं टिका हूं, और मेरे पास आज के दिन कोई पैसा नहीं है और जीवन में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला है, ऐसा वो महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी उनके पास आया है वो बस अपनी इंटेंशंस को पूरे करने के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है ऐसा वो समझते हैं, तो पंकज जी को प्लीज गाइड करें।
पंकज कुमार जी, बड़ी गहराई वाली बातें, बड़ी दिल की बातें आपने रखी है और दिल से प्रश्न पूछा है। पहले तो आपने पूरी सच्चाई से अपने आप को सामने रखा है, इसके लिए आपको बधाई दे। एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा कि पहली बात आपने कहा आई एम फेलियर ऑफ लाइफ, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि जिस चीज को, जिस सोच को हम मन में बसा लेते हैं ना, वो सोच हमारा भविष्य बन जाती है, हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब कर देती है। हमारा अतीत चाहे जैसा रहा, आप देखिए पुस्तकें उठाकर अध्ययन कीजिए, बहुत से बड़े बड़े वीवीआईपी हुए हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति हुए हैं, महान चिंतक हुए हैं, महान विभूतियां हुई, जो अनेकानेक बार फेल रहे हैं, अनेकानेक बार, लेकिन वो डगमगाए नहीं, अपने लक्ष्य नहीं डगमगाए, वो निरंतर चलते रहे। और जीवन का नाम ही निरंतर प्रवाह है, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत के लिए। इसलिए आप ये पहले तो मन से निकाल दीजिए कि मैं फेलियर हूं, क्यों कि आप जिस दिशा में आपने काम किए हैं, चाहे वो टीचिंग का रहा हो, चाहे सोशल वर्क का रहा, ये दोनों ही बहुत पवित्र जॉब रहे हैं, बहुत पवित्र दिशाएं रही है जिसमें आपने कार्य किया है। यहां आपके पास हर आदमी सेल्फ के लिए ही आएगा और यही आपकी सक्सेस है। या आपके पास कोई आ रहा है अपने सक्सेस के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इसका मतलब आप बहुत बड़े दाता हैं, आप उनको दे सकते हैं। जब आप दाता हैं, आप दे रहे हैं उनको, तो आपके पास तो भरपूर आ रहा है, तभी तो आप दे पा रहे हैं। अपने सोच को भी पॉजिटिव रखिए, आप सोचिए मत कि मैं फेलियर हूं, आप एक दाता हैं। और जैसे मैंने कहा नाम बड़े, मेरे पास जितने मेरे पास प्रश्न पूछने वाले आ रहे हैं, नाम बड़े सुंदर सुंदर आ रहे हैं, पंकज, कमल के फूल के पास जाके कभी खड़े हो जाइए, उस फोटो से अपना मिलान कर लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत फूल है, कितनी परिस्थितियों में उलझा रहता है, कितने जाल में उलझा है वो, अभी तो खिलने का समय है कमल, कितना सुंदर खिलता है वो, उस पर कोई दाग नहीं, उस पर कोई पानी की बूंद नहीं ठहरता है। इसलिए आप बड़े आराम से थोड़ा सोचे, अपने आप पहली बात अपने आप को स्वीकार नहीं करें कि मैं फेलियर हूं। ओके
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी, क्योंकि अपने आप को फेलियर नहीं समझना है। अगर हम जितना अपने आप को नेगेटिव थॉट्स देंगे तो फिर शायद हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी कि अगर कोई आपसे फायदा लेने के लिए आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास देने के लिए कुछ है, आप दाता हैं, इसलिए लोग आए हैं आपसे फायदा लेने के लिए भी आए हैं, तो इस बात पे खुश होना है। इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से आपने समझाया। मेरे साथ एक अगले दोस्त हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, इन्होंने कल ये सवाल पूछा था हमसे, विश्वास नाम है इनका, और ये लिखते हैं कि गुस्सा आता है क्या करें। विश्वास हमारे एक यंग दोस्त हैं और उन्होंने ये बात पूछी है।
विश्वास जी, गुस्सा आता है, वैसे तो देखिए ये बीमारी एक आम बीमारी है संसार में। आजकल तो आप देखेंगे गोद के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत चिड़चिड़ा बड़ा रिएक्ट करते हैं, बहुत गुस्सा, तो ये तो मैं ये कहूँ कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कलयुग की नीति है, लेकिन यदि उसी गुस्से को आप अपनी शक्ति बना लें, अपनी ऊर्जा बना लें, उसी गुस्से को आप जोश में परिवर्तन कर दें, उसी गुस्से को आप उमंग उत्साह में परिवर्तन कर दें, तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि गुस्सा आए तो थोड़ा सा अपने को कहें चलो आज नहीं, मैं थोड़ी देर बाद इस बात का जवाब दूंगा। आप अपने रिएक्शन का टाइम, अपना ड्यूरेशन थोड़ा बना बढ़ा दे उसको, एकदम इमीडिएट रिएक्ट नहीं करें किसी बात के ऊपर, ये चीज आपको मदद कर सकती है। और इसके लिए मैं ये जरूर आपको राय दूंगा विश्वास जी, कि आप विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप एक आध्यात्मिक चिंतन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव हैं, बड़ी महान विभूतियां हैं, बड़े हमारे बड़े बड़े संत हुए हैं, महंत हुए हैं, बड़े दार्शनिक हुए हैं, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करें और थोड़ा अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट बने और अपने आप पर थोड़ा समय दें। ये इसके लिए आपको जरूरत है थोड़े से मेडिटेशन की, आप मेडिटेशन करके थोड़ा अपने अंदर का चिंतन बढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है गुस्सा तभी आता है जब आदमी अंदर से खाली हो जाता है। एक कहावत है दुनिया में कि धोता चना बाजे लड़ना, इसलिए थोड़ा हमारे को थोड़ा जब हम भरपूर हो जाते हैं तो वो चीज स्थिर हो जाती है, अगजल गगरी छलकत जाए, जब पूरी भर जाती है गगरी तो छलकती नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भरपूर रखें, पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर, विचारों के अंदर आप थोड़ी सक्षमता रखें, अध्ययन को बढ़ाएं, मनन को बढ़ाएं, थोड़ा गहरी शांति का चिंतन करें, तो आप धीरे धीरे अपने ग्रोथ पर काबू पा सकते हैं।
जी भाई जी, एक और फ्रेंड है हमारे, गेंदा लाल पाटीदार ये नाम है इनका, और ये पढ़ाई से मिलता जुलता एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ, हालांकि ये अभी स्टूडेंट हैं, और ये लिखते हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट ये कहते हैं कि वो अपने फैमिली के लिए ये करना चाहते हैं, तो उनको गाइड करें कि कुछ कैसे उनको करना चाहिए, ये पूछते हैं।
बहुत सुंदर विचार है। देखिए अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें तो डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जा रहा है। आप देख रहे हैं डॉक्टर निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को दांव पे लगा करके सेवा के क्षेत्र में लगे हुए, इसलिए आपका बहुत सुंदर विचार है, बनना भी चाहिए और अवश्य बनेंगे आप। ये हमारी दुआएं हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप अवश्य डॉक्टर बने। लेकिन पहला जो आपने इसमें लिखा कि मैं अपनी फैमिली के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर में डॉक्टर के लिए तो सारा विश्व परिवार है। आप अपना लक्ष्य ये रखें कि मैं सारे विश्व कल्याण के लिए, सभी की सेवा के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपका परिवार भी उसमें सम्मिलित है, आप अवश्य डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें, और अभी ये समय है आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का, अपने अध्ययन पर फोकस करने का। इसलिए ज्यादा समय आप अपने अध्ययन पे दें, अपने लक्ष्य को सामने रख के चले। आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अभी से ही आप ये समझे कि मैं हूं ही डॉक्टर और सफलता मेरे सामने खड़ी है, डॉक्टर की डिग्री मेरे हाथ में आ चुकी है। जब ऐसा ऐसा चिंतन आप सुबह से अपने को देंगे, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जब आप पहला थॉट जब अपने अंदर देते हैं, तब आप देखें कि मैं एक सफल डॉक्टर बनकर उभर रहा हूं। ये सुबह का जो पहला विचार है, ये दिन भर आपको प्रेरित करेगा और आपके पठन पाठन में मदद करेगा। इसलिए अपने प्रश्न को, आप अपने सवाल को, अपने लक्ष्य को, इसको सुबह से सामने रखें और इसको सफलता निश्चित मानकर ही चलें, लेकिन फोकस अपनी पढ़ाई पर करें।
ये जो बात आपने अभी कही भाई जी, कि सिर्फ डॉक्टर बनना है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बस पूरे परिवार के लिए बनना है। जो आप अभी ये बात कह रहे थे कि डॉक्टर बनना सिर्फ फैमिली के लिए नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। हमारे साथ कोयना जी है, और कोयना जी का प्रश्न है, वो कहते हैं मुझे दूसरों से स्पिरिचुअलिटी शेयर करना पसंद नहीं है, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा ये पूछते हैं कोयना जी।
आवाज आया नहीं आपका?
जी मैं दोबारा कोशिश करता हूँ।
हेलो,
हमारे साथ प्रश्न पूछ रहे हैं कोयना जी, और कोयना जी का प्रश्न ये है कि वो कहते हैं कि कोयना जी ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे दूसरों से स्पिरिचुअलिटी शेयर करना पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे ना हो जाएं, तो ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल लगता है। बहुत बार ये बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों के लिए पर्सनल होता है, बट कोयना जी के साथ ये है कि उनको अच्छा नहीं लगता कि दूसरों के साथ वो कुछ स्पिरिचुअल चीजें शेयर करें, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि कहीं वो हमसे आगे नहीं निकल जाए, तो इस चीज को कैसे डील करें, ये पूछते हैं।
बहन आपका नाम बड़ा सुंदर है कोयना, इसलिए आप अकेले अपने आप को एक अकेला विभूति है आप, इसलिए पहले तो आप ये मन से निकालिए कि आध्यात्मिक बातें शेयर करना पसंद नहीं है। देखिए आध्यात्मिकता का मतलब या तो आपने किसी संकुचित दायरे से सोचा है, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब कोई धार्मिक बात नहीं होती। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। स्पिरिचुअल चिंतन जो होता है वो सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए होता है, वो पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसलिए पहले तो आप आध्यात्म का अर्थ समझें कि हमें परमात्मा के साथ आत्मिकता, हर आत्मा के साथ मेरी आत्मिकता हो, तभी मेरा चिंतन आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक बातें शेयर करना नहीं करना, ये तो बातें आपके अपने ऊपर है, ये कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। लेकिन पहली बात आप मन से गलतफहमी निकालें कि मैं आध्यात्मिक बातें करती हूँ तो कोई वो हमसे आगे ना निकल जाए, वो पीछे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा निस्वार्थ और सबका भला सोचने वाला, तो जो सबका भला सोचने वाला होगा वो तो अपने आप ही संसार में उठता चला जाएगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी पुश की आवश्यकता नहीं, किसी बूस्ट की आवश्यकता नहीं, वो तो खुद ही आगे बढ़ रहा है ना, वो तो सभी को आगे, जो सबको आगे बढ़ाता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचे कि आध्यात्म में कोई लेग पुलिंग होता है, ये विषय आध्यात्मिक व्यक्तियों का हो ही नहीं सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और किसी आध्यात्मिकता के चिंतन की गहराई में जाइए, आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाइए। इसको आप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आपने आध्यात्मिकता को समझा नहीं। आध्यात्म तो बहुत गहरा विषय है और बड़ा सहज विषय भी है, गहराई के साथ इसमें सहजता भी है। इसलिए आप तो ये आध्यात्मिक बनना सबसे पहले तो हमारे खुद के लिए बहुत बेहतर है। मेरा खुद का चिंतन जब आध्यात्मिक हो जाता है तो मैं सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाता हूँ। मैं दूसरों को ऊपर से जब देखता हूँ तो मुझे हर छोटी चीज समस्या भी छोटी नजर आती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति का चिंतन तो बड़ा विशाल होता है और इसको जितना बांटेंगे, भगवान का प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाया जाता है ना बहन, देखिए कोई ना बहन प्रसाद को बांट करके जितना खाते हैं उतना आनंद आता है। तो आध्यात्मिकता एक प्रसाद है, बांटते रहिए, खाते रहिए, खुश रहिए। ओके कोई ना बहन,
मैं समझता हूँ ये आपने बहुत अच्छी चीज कही कि प्रसाद जो है बांटा जाता है, तो इसलिए उसे शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाती कि आप आगे बढ़ने के बारे में या फिर कोई और आपसे आगे चला जाएगा तो इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे अगले दोस्त हैं अजय राजपूत नाम है इनका, और अजय जी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और फेसबुक पे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो प्रश्न पूछते हैं भाई जी कि हाउ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। वो बोलते हैं कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा पूछते हैं अजय नाम है इनका।
अजय जी राजपूत, देखिए आप तो वैसे ही सूर्यवंशी हैं और राजपूतों के हौसले तो हमेशा बुलंद रहे, इतिहास गवाह है कि राजपूतों ने इतिहास बनाए हैं। एक एक अकेले अकेले राजपूत ने हजारों हजारों सैनिक का, सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों का सामना किया है और अनेक अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की। और फिर आपके राजपूत के आगे आपके नाम के आगे क्या लगा हुआ, अजय, आपको कोई जीत ही नहीं सकता, आप तो अजय हैं। विल पावर स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या, ये क्या क्यों कैसे, ये क्यों क्यों की जो क्यों होती है ना, ये आंसरलेस होती है और बड़ी लंबी होती है। इसलिए इस क्यों की क्यों से अपने आप को निजात दें और अपने आप पर विश्वास रखें। हर कार्य को शांत मन से, गंभीरता से चिंतन करके शुरू करें, आप उसमें सक्सेस 100% पाएंगे। इसलिए पहली बात कि अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए, अपने विल को, अपनी इच्छा शक्ति को, अर्थात अपने संकल्पों, इच्छा शक्ति का शुरुआत होती है संकल्पों से, हमारी थॉट पावर से। तो जैसे जैसे हमारे थॉट्स पावरफुल पॉजिटिव होंगे, सोच हमारा सकारात्मक होगा, अच्छे अच्छे विचार दीजिए मन को, चाहे आप दो तीन कोई सुबह अच्छे कोटेशन ले लीजिए, कोई स्लोगन ले लीजिए, बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन उपलब्ध होते हैं दुनिया में आजकल, एक कोटेशन को लेके भी यदि आप उसमें मनन करेंगे दिन भर तो आपकी विल पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं। और मैं क्योंकि मैं खुद भी कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ और गुजर भी रहा हूँ, लगातार परिस्थितियों से गुजरते हैं हम लोग, लेकिन कभी घबराते नहीं क्योंकि थोड़े से आध्यात्म और मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ हमें ये पता होता है कि एक आत्मा का विनाशी चैतन्य स्वरूप है और परमात्मा मेरे साथ है, तो इसलिए मुझे कभी घबराहट नहीं होती और सक्सेस हमेशा हमारे साथ होती है। तो थोड़ा सा अपने चिंतन को आध्यात्मिक और मेडिटेशन से भी जोड़े, ठीक है भाई अजय जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया इस उत्तर के लिए। तो आपने अभी ये कहा अजय जी कि हर दिन वो कुछ पॉजिटिव सोचें, कोट वगैरह कुछ पढ़ें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम लोग इन चीजों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लगता है कि भाई इसको पढ़ने से क्या होगा, बट ये पढ़ने से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। और अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस लगाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं और रविकांत जी प्रश्न पूछते हैं कि ओम शांति भाई जी, पूछना था कि क्या मैं ये जो हमारी इसमें आने के बाद हिंदू धर्म के जो ट्रेडिशन है, पूजा पाठ इत्यादि को मैं फॉलो कर सकता हूँ क्या, ऐसे रविकांत जी।
बहुत सुंदर प्रश्न पूछा रविकांत जी ने, आपने अपनी शुरुआत ओम शांति से की है तो आप तो बीके लगते हैं, सेमी बीके तो आप लग ही रहे हैं। पहली बात तो ये हम मन से निकाल लीजिए कि बीके लाइफ जी करके आप हिंदू धर्म के ट्रेडिशन, पूजा पाठ पद्धति प्रार्थना इसको फॉलो नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। ब्रह्मा कुमारी संस्था या बीके बनने से आपकी किसी भी मान्यता को चोट नहीं पहुंचती। आप अपनी पूजा पाठ को बरकरार रख सकते हैं, आप अपने पाठ को बरकरार रख सकते हैं, कहीं भी इसमें बाधा नहीं है। बल्कि एक चीज हमारे बहुत बड़ी प्लस होती है हमारे अंदर बीके बनने से, कि जब हम बीके बनते हैं तो हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। जिनकी पूजा आप कर रहे हैं वो आपके साथ ही महसूस होने लगता है। जो पाठ आप कर रहे हैं, जिसका चिंतन आप करते हैं, वो आपके सामने प्रैक्टिकल होने लगता है। इसलिए बीके लाइफ में तो आप और ज्यादा हिंदू धर्म के ट्रेडिशन का पालन कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके कर सकते हैं और बिल्कुल यथार्थ तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत सहज है। पहले आप बीके बन के उसकी गहराई में जाइए, आध्यात्मिक बहनों से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से या किसी अच्छे गाइड से आप सलाह मशवरा करिए, उनके संपर्क में रहिए। थोड़ा नियमित मेडिटेशन, क्योंकि आप बीके बनना ही चाहते हैं तो राजयोग मेडिटेशन से अवश्य जुड़े होंगे, इसलिए ये बातें आपको कहीं मायने नहीं रखती। पहला ये सोच, क्योंकि कई प्रकार के देखे दुनिया में बातें होती, उन बातों में नहीं जा करके सही ढंग से आप बीके बने तो आपको आपके किसी भी हिंदू धर्म की पालना में आपको बाधा नहीं होगा। इस तक
बहुत शुक्रिया भाई जी। एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, नाम है इनका रजनी, और रजनी जी कहते हैं कि ओम शांति, एंड आई हैव मेनी टेंशन्स अबाउट माय स्टडीज एंड फ्यूचर करियर, टेल मी हाउ टू रिड्यूस देम। रजनी जी फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बहुत टेंशन होता है अपने पढ़ाई को लेकर और फ्यूचर करियर को लेकर, कैसे मैं इस टेंशन को कम करूं, ये प्रश्न पूछते हैं रजनी।
देखिए रजनी जी, प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है आपने, और जो बातें आप कह रही हैं ये तो एक सामान्य आजकल मेरे ख्याल से सभी बच्चों के अंदर ये समस्या है। सभी अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि एट प्रेजेंट आप चिंतन उसका करें जो आप कर सकते हैं, आप चिंतन उसका नहीं करें जो आप नहीं कर सकते, जो आपके वश में नहीं है। कल क्या होना है ये आपके वश में नहीं है, लेकिन आपका आज आपके हाथ में है, आपके वश में है। आप अपने आज को आप फोकस करें। आज आपके हाथ में पुस्तकें हैं, आज आपके हाथ में पढ़ाई है, करियर आपका भविष्य का विषय है। आज का दिन आपका ठीक निकला है, आज आपने अच्छा पढ़ाई किया है, आपने अच्छा एग्जाम फेस किया है, तो नेचुरल रिजल्ट अच्छा आना ही है। और जब अच्छा रिजल्ट आना है तो करियर आपका ब्राइट होगा ही होगा। इसलिए इसको चिंता में नहीं डाले, क्योंकि हम कल की जब सोचने लग जाते हैं, बहुत आगे की जब दूर की सोचने लग जाते हैं तो टेंशन क्रिएट होता है। और टेंशन के ऊपर आप ए लगा दीजिए, टेंशन के आगे ए लगाने से क्या हो जाएगा, अटेंशन। अटेंशन प्लीज, अपने ऊपर अटेंशन दीजिए, अपने आज के ऊपर रजनी बहन अटेंशन दीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कल आपका बहुत बेहतर है, क्योंकि आज आपका अगर बेहतर है तो कल आपका अवश्य ही बेहतर होगा। इसलिए आप करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में इतनी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। आप अपने आप को आज पर फोकस रखिए, आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक अच्छे स्टूडेंट की बात है, रिलैक्स होकर के पढ़े, बड़ा मन को रिलैक्स रखिए, थोड़ा हल्का होकर के, टेंशन फ्री बातें करके, अच्छी अच्छी बातों को सोच करके और पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ाई करें, करियर आपका बेहतर ही होगा, अवश्य होगा
जी। एक और स्टूडेंट ही है हमारे साथ भाई जी, अनन्या त्रिवेदी नाम है इनका, और अनन्या जी यूट्यूब से हमारे साथ प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और वो पूछती हैं कि हाउ कैन आई अचीव माय गोल, माय एम, डिस्पाइट हैविंग बैड हेल्थ। I am demotivated nowadays because of my health issues and relationships. I am not able to concentrate, but I want to crack the exam. Ananya ji ek exam ki taiyari kar rahi hain, but wo kehte hain ki unka swasthya thoda kharab chal raha hai, jiske chalte wo bahut demotivated mehsoos karti hain apne aap ko, aur apne relationships ki wajah se bhi wo thoda demotivation mehsoos karte hain, aur iski wajah se wo concentrate nahi kar pa rahi, but fir bhi wo exam ko clear karna chahte hain. क्या करें और कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूं मेरे हेल्थ के बावजूद, करना कैसे संभव होगा, ऐसे अनन्या पूछती हैं।
अनन्या जी, आपने पहली बात बड़ी अच्छी कही कि मैं अपने गोल को अचीव करना चाहती हूं, लेकिन आगे की लाइन में अपने आप को आपने एक रोगी स्वीकार कर लिया है। आप मुझे देख रही हैं, I am 66, मेरा रोग आप सुनेंगी, मुझे ब्रेन ट्यूमर 27 साल से बीमारी है और सारे विश्व के डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया हुआ है, मेरी मौत 27 साल पहले फिक्स कर दी है। ये ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ये देखिए जीना मरना ये दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं। आपने अपने स्वास्थ्य में हो सकता है रुग्णता है, बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट लेते रहिए हल्के विचारों से, हल्का मन रख के, लेकिन आप अपने गोल के प्रति अवेयर रहिए। आपके चाहे रिलेशन में आपको मदद नहीं मिल रही है, ये तो मैंने कहा ना कि चुनौती, आप एक चैलेंज को स्वीकार करके आप एक महाबली बन के एक योद्धा बन के उभरते, ये समय आपको आगे बढ़ाने के लिए, जब कोई आपको सहयोग नहीं देता है तो अकेला चालू रहे। आज देखिए महात्मा गांधी अपनी जर्जर काया से वृद्धावस्था के अंदर अकेला चालू का नारा दिया उन्होंने, और वो नारा ऐसा फलीभूत हुआ कि धीरे 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 वो चलते चले गए, काफिला जुड़ता चला गया और आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। तो एक आदमी की सोच ने, एक आदमी के प्रयासों ने, उनकी काया भी जर्जर थी, उनका स्वास्थ्य भी बहुत फिट नहीं था, लेकिन वो एक योद्धा बन के उभरे। आपको भी ये समय आपको प्रेरित कर रहा है कि बहन अनन्या जी, आप अनन्य बन करके, जैसा अनन्या का मतलब ही होता है जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो आप तो वो एक अनोखी विभूति हो सकती है आप अपने नाम के चिंतन में जाकर के भी। तो इसलिए आप बेहतर स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं, दुआ देंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो और आप अपनी चिकित्सा पद्धति को कायम रखिए, अपने गोल को सामने रखिए और दुनिया की परवाह मत करिए मुझे कि कोई सहयोग दे रहा नहीं दे रहा, क्योंकि गोल अचीव आपने करना है तो प्रयास भी आपके होना चाहिए। जब सपने आपके हैं तो मेहनत और प्रयास भी आपके ही होना चाहिए, ठीक है
जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी। एक और हमारे साथ दोस्त हैं जो फेसबुक से जुड़े हैं, विश्वास नाम है इनका, और विश्वास जी पूछते हैं, डियर भाई साहब, ड्यूरिंग दिस क्लाइमेट क्राइसिस हाउ डज फूड हैबिट्स रिलेट टू कॉन्टेम्प्ररी टॉपिक विद चेंज। वो कहते हैं ये सभी हम जानते हैं कि हम एक क्लाइमेट क्राइसिस के समय में जी रहे हैं, और ऐसे में हमारे फूड हैबिट्स आज के लिए कितने रेलिवेंट हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, इनमें हमें क्या बदलाव लाना चाहिए। विश्वास,
देखिए प्रश्न तो आज के इसमें माहौल में बहुत यथार्थ प्रश्न है ये, और ये बातें बहुत बहुतों के मन में आती भी हैं। पहली बात ये कि ये कोरोना डिजीज का जो वातावरण बना है सारे विश्व में, इसको भी आप पॉजिटिव लें, क्योंकि इसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं, इसने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, हमारी वापस हमारी सभ्यता संस्कृति को इसने उभारा है, हमारी फूड हैबिट्स को भी हमें सुधारना है। आप देखिए जितना आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, जितना आप तला पका भारी भोजन करेंगे, आपका शरीर भारी होगा और आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इसलिए अपनी फूड हैबिट्स को, आप तो वैसे भी आपका नाम विश्वास है और बहुत अच्छा भवेतोष नाम है आपका, मैं शायद परिचित भी रहा हूं, लेकिन हमारा जो पवित्र कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, एज द फूड सो द माइंड, इसलिए भोजन पे तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमारा शरीर जो ग्रहण करता है वही हमारी आत्मा को फीड करती है, वही हमारे मन बुद्धि में जाता है, वही हमारे सोच में जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, एक बड़ी खुशी आप देखेंगे, एक कहावत है जैसी आहार वैसी डकार, हमारी डकार भी उसी टाइप की आएगी जैसा आहार मेरे पेट के अंदर गया है। इसलिए इस वातावरण में जैसा बहुत से डॉक्टर राय देते हैं कि हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, थोड़ा काढ़े का सेवन करना चाहिए, नेचुरल फूड्स का, जितना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो फूड्स हमारे लिए, जो सप्लीमेंट्स हमारे लिए आवश्यक है उनका सेवन करना चाहिए हमें, और कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ा अपनी दिनचर्या पे, थोड़ा योगा पे, वॉकिंग पे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे ध्यान दें, शरीर को स्वस्थ रखें, तो ये कोई खास बात नहीं है। इसलिए आप अपने आप को अपने भोजन पे ध्यान दे करके बहुत अच्छे से आप चल सकते हैं, और इन परिस्थितियों को पॉजिटिव समझें। अब मैं इस पर समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बताता, इस कोरोना ने विश्व को कितनी बड़ी बड़ी सौगातें दी, पर्यावरण को कितनी सौगात दी है, संसार में कितना परिवर्तन आए, इसलिए बी पॉजिटिव।
जी बहुत ही अच्छी बात है आपने कही भाई जी। और अजय शर्मा हमारे साथ हैं, ये भी फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और ये भी प्रश्न पूछते हैं, यंग फ्रेंड है हमारे, और कहते हैं कि हाउ कैन वी ओवरकम डिप्रेशन विदाउट मेडिसिन। आप अपना एग्जाम्पल शेयर कर रहे थे कि आपने खुद एक बड़ी बीमारी को डील किया है, जब डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए थे ऐसे टाइम पर भी आप अपने मनोबल को आपने कमजोर होने नहीं दिया। तो अजय शर्मा जी डिप्रेशन के बारे में पूछते हैं कि विदाउट मेडिसिन मैं कैसे ओवरकम करूं, ये पूछते हैं अजय।
अजय जी पहली बात तो ये जो आपने समस्या बताई डिप्रेशन की, ये धीरे धीरे संसार में बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिप्रेशन की शुरुआत ये होती है कि मेरे मन पे इम्प्रेशन क्या है, मेरा अपना इम्प्रेशन क्या है, मेरा अपना सोच क्या है। विदाउट मेडिसिन आप ठीक होना चाहते हैं, पहले की बात आपने बहुत अच्छी की कि आप विदाउट मेडिसिन ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली आज हम हमारे पास डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते भी हैं और उनको हम धीरे धीरे क्योर किया है, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। डॉक्टर लोग खुद हमारे पास रेफर करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाइए, मेडिटेशन करिए, राजयोग का प्रैक्टिस करिए और वहां के चिंतन से जुड़िए ताकि आपका डिप्रेशन ठीक होगा। क्योंकि डिप्रेशन का मेडिसिन जो होता है वो उसमें बहुत सी, मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मोस्टली मेडिसिन के अंदर आपको ज्यादातर सोचने से आपको मुक्त किया जाता है, दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा नींद का प्रभाव बढ़ाया जाता है, नींद का उसमें डोज दिया जाता है, तो उससे धीरे धीरे आदमी और डल ही होता है। इसलिए डिप्रेशन के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका है कि पहले तो कोशिश ये करें कि आप ज्यादातर संगठन में रहें, संयुक्त परिवार में है या जहां भी हैं, आप अपने आप को अकेला कम से कम रखें। थोड़े दिन आप इस बात पर जरूर ध्यान दें, अकेला अपने आप को कम रखें, कंपनी में रहें, अच्छे अच्छी पुस्तकों के साथ जुड़े रहें, थोड़ा खुल करके हंसें, बातचीत करें, शेयर करें, अपनी बातों को दूसरों से शेयर करें और बहुत गहराई से मेडिटेशन का अभ्यास करें, किसी अच्छे गाइड को देखें। आप जिस भी प्रकार के मेडिटेशन में आपका विश्वास है उस पर आप बात करें, जुड़े उनसे और मेडिटेशन का अभ्यास करें, थोड़ा अंतर्मुखी बन करके, क्योंकि कहावत है अंतर्मुखी सदा सुखी। क्योंकि आपने जैसे मेरे लिए कहा कि मैं इतना बीमार होने के बाद भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिटेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, इन पर्टिकुलर राजयोगा मेडिटेशन एक बहुत बड़ी ताकत है जो संसार को दिशा दे रहा है और आगे भी दिशा देता रहेगा। तो अजय जी पहले तो आप अपने आप को ये बार बार ये विचार देना नहीं रखे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं करते हो, कहते ना सोच सोच के जो सोचोगे वही बनोगे। अब आपने सोचना शुरू कर दिया मैं डिप्रेशन मुक्त हूँ, आई एम ए पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, और अपने ऐसे विचार बांटना शुरू करिए, दूसरों को अपने खुशी के विचार दीजिए और कंपनी में रहिए, कोशिश करके अकेला मत रहिए। और थोड़ी बहुत मेडिसिन लेना भी पड़े तो कोई ज्यादा परहेज की आवश्यकता नहीं है, हल्की फुल्की मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। शुरू में अगर आप मेडिटेशन दें, मेडिसिन प्लस मेडिटेशन दोनों को कंबाइन करके चलाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी अजय जी के लिए, और आपने बहुत ही सुंदर अनुभव भी शेयर किया। हमारे दो दोस्त हैं जो मिलते जुलते सवाल पूछ रहे हैं, मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ लेना चाहता हूं। एक गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, वो पूछते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड नाउडेज एंड थिंकिंग वेरियस मैटर्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट, हाउ विल आई ओवरकम एंड लीव पीसफुली फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा पूछते हैं। गोपाल कृष्ण जी मेरे ख्याल से एक सीनियर सिटीजन है और वो कहते हैं कि मैं फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं, तो इसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, कि हम कैसे इन समस्याओं से ओवरकम करेंगे और कैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन का जो समय है वो बिता सकते हैं, ऐसा ये पूछते हैं। और साथ साथ इससे मिलता जुलता सवाल है, धर्म नारायण दुबे जी हैं, वो कहते हैं कि वो ब्रह्म कुमारी से काफी वर्षों से जुड़े हैं और माउंट आबू में भी कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं और जूरिस्ट्रिंग के कार्यक्रम में आ चुके हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं। और वो कहते हैं कुछ दिन से मन में अनिर्णय की स्थिति जैसी आ गई है, मेडिटेशन करता हूं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, हमेशा चिंतन करता रहता हूं, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ऐसा ही पूछते हैं धर्म नारायण दुबे जी, ये प्रश्न पूछते हैं।
अग्रवाल जी जो पहले सवाली थे
जी,
उन्होंने डिप्रेशन की बात की कि आज की परिस्थितियों में मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं, मैंने पहले इसका उत्तर दे चुका हूं पहले सवालकर्ता को, आपने सुना उसमें भी सुना होगा कि देखिए परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, पर स्थिति पराई स्थिति, बेटर यह है कि आप अपनी स्व स्थिति पर चिंतन करें, अपने को डिफेंड करें, अपने परिवार को, अपने वातावरण को, अपने आसपास को सुरक्षित रखें, यही इस परिस्थिति में सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे क्या होगा कैसे होगा मैं क्या कर पाऊंगा इससे आगे कैसे बढ़ूंगा ये कोरोना ठीक होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि जो चीज आपके वश में नहीं उस पर यदि आप चिंतन करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसलिए पहली चिंतन तो गोपाल किशन जी आप बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर सोचें, अपनी स्वस्थिति पर सोचें, और आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूं, आप तो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपने तो काफी अनुभव लिया है जीवन के अंदर, और जब कम से कम 60 साल से 65 साल की उम्र होगी आपकी जो मैं देख पा रहा हूं गोपाल किशन जी, तो आप तो बहुतों को गाइड बन सकते हैं, आप तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए पहले तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, और डिप्रेशन मुक्त होने के लिए जैसे मैंने पहले सवाली को कहा था कि आप डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए अपने मन के विचार पॉजिटिव रखें, अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ें, अच्छे विचार दें, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो किसी न किसी बीमारी से गंभीर होने के बावजूद उभर के बाहर आए, तो आपका आत्मविश्वास आपको हर चीज से निजात दिलाता है, खाली मेडिसिन काम नहीं करती, आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, और आपके पास तो नाम ही बहुत सुंदर है गोपाल किशन कन्हैया, आप कुछ नहीं तो कृष्ण जी के चित्र देखते रहिए, उनकी लीला रासलीला पढ़ते रहिए, उनकी बाल लीला पढ़ते रहिए, भागवत पढ़ेंगे तब भी आपको बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे, उन्होंने तो हर परिस्थिति को कृष्ण ने तो हंसते खेलते पार किया, तो आप हंसते खेलते खुश रहिए, एकांत से बचिए, थोड़ा मनन चिंतन अच्छे करिए, कंपनी में रहिए, खुशी की बातें करिए, और मेडिसिन प्लस मेडिटेशन दोनों का प्रयोग करिए। दूसरे सवाल थे हमारे वकील थे भाई, नाम तो मैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप होता क्या है, हाँ तो वकील साहब मेरा निवेदन ये है कि पहले वकील तो आप हैं, वकील दूसरों के लिए बनिए, अपने लिए तो जज बन जाइए, खुद के जस्टिस बन जाए आप, क्योंकि वकील क्या होता है तर्क ज्यादा करता है, क्या क्यों कैसे, तो जब क्या क्यों कैसे में जब बुद्धि जाती है ना तो अंदर से खालीपन आता है। तो धर्म नारायण जी दुबे साहब आप तो बहुत अच्छे वकील रहे हैं, सफल वकील हैं, और ब्रह्मा कुमारी से काफी सालों से जुड़े हैं, लेकिन क्या होता है कि जुड़ने का एक अंदाज थोड़ा जुदा होता है, जुड़ने का थोड़ा जब गहराई से जब जुड़ जाते हैं ना, जब पकड़ लेते हैं उसकी नींव को और जब उसकी थीम को पकड़ लेते हैं तो हमारा चिंतन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, निर्णय की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि जज ये कहे कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं, आप तो भविष्य में आप एक प्रकार के वकील जो होते हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील तो बड़े सीनियर वकीलों में से ही जज नियुक्त किए जाते हैं, तो आप तो एक अच्छे जज भी हैं, आप एक अच्छे जज बन करके सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दें थोड़ा समय कि मेरा सोच कहां से क्या सोच आ रहा है, क्या ये सोच मेरे लिए शक्तिशाली मेरे को बनाने में मददगार है, या ये व्यर्थ सोच है नेगेटिव है जिसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसे सोच को निकालिए, उसकी जगह उस खाली उस सोच को निकाल के एक पॉजिटिव विचार अपने मन को दे दीजिए, बस ये थोड़ा थोड़ा अपनी मेहनत करते रहें, थोड़ा निकालें थोड़ा डालें, थोड़ा निकालें थोड़ा डालें, तो ये सब आसान हो जाएगा, कोई खास बात नहीं जी।
मैं समझता हूँ भाई जी, जो लोग आपके अनुभव के बारे में सुन रहे थे, जो आप चीजें शेयर कर रहे थे, उससे मिलता जुलता ही एक प्रश्न लोग वो सुनकर पूछ रहे हैं। कुमुद रंजन नाम है इनका और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो कहते हैं कि आई एम अ हार्ट पेशेंट and how I shall be able to increase my pumping of heart and make it strong. Kumud Ranjan ji कहते हैं कि वो एक heart के मरीज हैं और वो पूछते हैं कि क्या मैं अपने heart की pumping capacity को increase कर सकता हूँ, क्या मैं अपने हृदय को शक्तिशाली बना सकता हूँ, ऐसा पूछते हैं.
कुमुद रंजन जी, जो आपकी समस्या है ये संसार में आजकल एक आम समस्या है. आप हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन आप जब अपने चिंतन को थोड़ा पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि आप बार बार अगर हार्ट का चिंतन करेंगे तो आपको उसकी श्वसन क्रिया पे भी आपका इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी सांसों में आपके ऑक्सीजन में कमी आती है. इसलिए पहले तो आप चिंता मुक्त होइए कि देखिए जीना मरना ईश्वर हाथ मानते हैं, दुनिया में भी सभी लोग, मेरे हाथ में नहीं है. इसलिए अपने दिल को आप हल्का रखें और दिलाराम परमात्मा को अपना दिल दे दें, वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेगा. दूसरी एक बात मैं आपको एक निजी राय दूंगा आपको कि हार्ट के लिए नेचुरोपैथी में बहुत सी चीजें बताई गई है, योगासन वगैरह भी है, प्राणायाम भी है. और मैं एक राय देना चाहिए मुझे कि हमारे पास एक डॉक्टर हैं माउंट आबू में, हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता साहब हैं, जिन्होंने एक कैड प्रोग्राम चला करके कम से कम 10,000 लोगों को हार्ट की बीमारी से निजात दिलाई है और उनकी ओरिजिनल आर्टरीज को खोल दिया है. उसमें आहार विहार पद्धति मेडिटेशन को वो शामिल करते हैं. आप कहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था से पूछ करके संपर्क करके उनका घर बैठे भी आप इलाज ले सकते हैं. वो आपको सारी उनकी लिटरेचर आप ले सकते हैं, उसमें किस प्रकार का आहार कितना बजे क्या लेना है, किस प्रकार का आपको सोच करना है, कैसे आपको ध्यान करना है, ये बातों पे थोड़ा फोकस करें तो ये आप ठीक हो सकते हैं. हार्ट प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको बस मन को हल्का रखें, बुद्धि को हल्का रखें, सोच को हल्का रखें, बार बार पेशेंट पेशेंट नहीं सोचें. तो कुमुद रंजन जी आप स्वस्थ रहेंगे, हमारी बहुत दुआ है, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आपको शालू. और कोशिश करें जैसे मैंने कहा कि हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, आप नाम नोट कर लें, कभी उनसे संपर्क हो सा उनसे बात कर पाए तो, या मुझे कभी आप संपर्क करिएगा, मैं आपको इसका मार्गदर्शन अलग से दे सकता हूँ. ठीक है
जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी. हमारे साथ एक और एडवोकेट जुड़े हैं, नाम है इनका सुनील पटेल, यूट्यूब से हमारे साथ लाइव देख रहे हैं कार्यक्रम. कहते हैं कि आजकल के परिदृश्य में युवा पीढ़ी धर्म धर्म और उसके मर्म से काफी दूर है, और उन्हें कैसे धर्म और संस्कार की ओर प्रेरित किया जाए, क्योंकि उनका तो सिस्टम व मान्यता चमत्कार से नमस्कार की ओर होता जा रहा है. तो सुनील पटेल जी एडवोकेट हैं, नीमच से जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं.
सुनील जी पटेल ये तो वैसे भी एडवोकेट हैं और इनके प्रश्न तो बहुत अच्छे होते हैं. ये देखिए आपने बहुत अच्छा पूछा कि युवा पीढ़ी का धर्म और उसके मर्म से काफी दूर हो रहे हैं, उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए. प्रेरित करने की चिंता छोड़ के हमें अपने आप को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है. मैं खुद अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूं, मेरा चिंतन इस टाइप का हो, मेरा कर्म, मेरा सोच, मेरा विचार और मेरी सोशल सर्विसेस दुनिया के लिए ऐसी हो, तो अपने आप युवा धीरे धीरे बदलता है. हम क्या होता है कि जब युवा को कई बार हम युवा को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं, उससे वो युवा में सुधार नहीं आता. और हो यही रहा, युवा के साथ एक तरह से हम देखेंगे इसमें समाज का भी दोष है कि युवा जो दिग्भ्रमित हो रहा है उसमें समाज युवा के मर्म को समझ नहीं पा रहा है, तो उसका धर्म और मर्म ठीक कैसे होगा. हमें युवा के मर्म को समझ करके उसके मर्म को स्पर्श करके सहानुभूति प्यार के साथ उसके साथ पेश आना होगा. कभी कभी क्या करते हैं हम, बहुत अपेक्षाएं करके अपनी बातों को युवा के ऊपर थोपते हैं, और आज का युवा इतनी आसानी से हर चीज को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो आज की टेक्नोलॉजी, आज का विज्ञान आज के युग में बढ़ा हुआ है, आज के परिदृश्य में उसको बहुत बहुत विस्तार से उसको हर चीज मिलती है, तो वो इतनी आसानी स्वीकार नहीं करता है. इससे पहले हम किसी भी युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर करें, उसकी बातों को सुने, धैर्यतापूर्वक उनकी समस्याओं को सुना जाए, तो उनके धर्म और उनके संस्कार को आप प्रेरित कर सकते हैं. धीरे धीरे परिवर्तन आता है. हमारे पास देखिए, मैं 20 साल की उम्र से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया, तो जरूर किसी ने मुझे प्रेरित किया. मैं एक शैतान किस्म का व्यक्ति था, मेरा पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आते ही परिवर्तन आया. तो ये प्रेरणा हमारी बहनों के संग से, उनके विचार से और उनकी मिठास से, उनकी वाणी के, उनके वात्सल्य और प्रेम से, उनके ममत्व से परिवर्तन आता है. हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रेरित करते हैं और सोचते हैं कि आज एक दिन में बटन दबा दें और इधर ये ऐसा हो जाएगा, कोई जादू नहीं है। चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया, लेकिन जब हम समझेंगे उनको, उनके मर्म को समझेंगे, तो धीरे धीरे चमत्कार ही होगा। ही ब्रह्मा कुमारी में अनेक चमत्कार हैं, अनेक अनेक युवाओं ने, लाखों युवाओं ने अपने आप को परिवर्तन किया है और ये हो सकता है। इसलिए पहले हमें रोल मॉडल के रूप में खुद को प्रस्तुत करना होगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी। हालांकि हमारे पास समय ज्यादा प्रश्नों के लिए नहीं है, लगभग हम आखिरी मोड़ तक आ चुके हैं, तो मैं यहीं पर एक आखिरी सवाल ले लेना चाहता हूँ। वायन प्रधान जी हैं और पूछते हैं कि जीवन में सफलता का रहस्य क्या है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ये आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर दें।
जीवन में सफलता का रहस्य, सबसे पहला रहस्य कि अपने ऊपर भरोसा, अपना आत्मविश्वास। सफलता हमारे हाथ में है, सफलता की कुंजी है हमारी एकाग्रता और हमारा विश्वास। जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं और हमारा कार्य, हमारी जो भी हम कार्य करते हैं उसकी दिशा सही होनी चाहिए कि मेरी जो कार्य की दिशा क्या है। अगर मैं किसी गलत दिशा में कार्य कर रहा हूं तो वो सफलता हमारे लिए श्रापित करने वाली हो जाती है। सफलता का पहला ही रहस्य ये है कि सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बना के रखें और हमारा चिंतन अच्छा हो, और कम से कम हमारे हर चिंतन में कुछ परसेंट दूसरों के लिए अवश्य हो, दूसरों को देने की, आगे बढ़ाने की, कल्याण की, सबसे दुआएं प्राप्त करने की भावना उसमें जरूर सम्मिलित होनी चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं चल सकता, अकेला नहीं जी सकता, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ उसको चलना होता है। तो परिवार और समाज के लिए भी हम अपने को उपयोगी बनाएं, केवल स्वार्थी बन के अपने लिए नहीं सोचे, समाज उपयोगी बने, राष्ट्र उपयोगी बने, तो हमारे हर कार्य में जब सबकी दुआएं मिलती है, टीम टीम की हमें दुआएं मिलती है, सहयोग की दुआएं मिलती है, तो हमें हर कार्य में सफलता आसान हो जाती है। तो हमारा आत्मविश्वास और दूसरों के लिए कल्याण की कामना हमें जीवन के हर क्षेत्र में अवश्य अवश्य सफल।
बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया, और वायन प्रधान जी मैं समझता हूँ उनके माध्यम से बहुत सारे दोस्तों ने ये चीजें सही सही से सीखी कि लाइफ के लिए, सक्सेस लेने के लिए क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, और अगर हम ये छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें जीवन के लिए आसान हो सकती हैं। मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज प्रश्न पूछे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न आप दोस्तों ने पूछे, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। समय की कमी होती है, वरना और भी सुंदर प्रश्न है जिनको मैं कल के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगा। जगदीश सिसोदिया जी ने प्रश्न पूछा, श्रीति जी ने प्रश्न पूछा है, कुछ और भी दोस्तों ने प्रश्न पूछे हैं जिनको हम कल के कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज जिन्होंने प्रश्न पूछे उन सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं आप सभी दोस्तों की तरफ से भाई जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई साहब आज हमारे साथ खास लाइव जुड़े नीमत से, और इतने सुंदर अनुभव उन्होंने उनके पर्सनल भी हमारे साथ शेयर किए और हमें मार्गदर्शन ऑफर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई जी का।
सभी का करना चाहूंगा, सबसे पहली बार बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न मेरे सामने आए, बड़े अच्छे अच्छे विचार खुल के रखे लोग, तो सभी प्रश्नकर्ताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
क्योंकि आप समय में एक्सपीरियंस मेडिटेटर हैं और आपने मेडिटेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई किया है उसके हिसाब से देखे हैं, तो उस मेडिटेशन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद 4-5 मिनट।
देखिए मेडिटेशन के लिए सबसे पहले हम बहुत रिलैक्स होके बैठे, शांत मन से बैठे, अपने विचारों को थोड़ा विराम दें, अपने चिंतन को थोड़ा सा आराम दें, शरीर ढीला छोड़ और शरीर के भान से होने का प्रयास करो। जब मेडिटेशन करें तो शरीर के भान से संबंधों से मुक्त हो, अपने इष्ट का ध्यान रखें। प्रभु परमात्मा का प्रकाश ऊपर से मुझ पे निरंतर पड़ रहा है। यही दिव्य प्रकाश
हूँ।